أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آج ہم لیکچر نمبر 26 کا مطالعہ کریں گے، تخلیق کا قانون. یہ جو پیچھے ہم نے لیکچر نمبر 25 میں پڑھا کہ فطرت کسے کہتے ہیں، تو وہ نسمہ کی حرکت اور اس کے طول اور اس کی رفتار اور اس کا ہجوم، یعنی نسمہ کی حرکت کی طوالت، لینتھ، رفتار یعنی سپیڈ یا ویلوسٹی، اور ہجوم یعنی اس کی ڈینسٹی. تو یہ تین فیکٹرز ہیں، ان سے مراد ہے اصل میں نسمہ کی کارکردگی کو ہی اللہ نے کہا فطرت، یعنی سب کچھ ذہن کی تخلیق ہے، ذہن کی حرکت کا نام ہے تخلیق. جب ذہن حرکت کرتا ہے تو چیزیں تخلیق ہوتی ہیں، اسی کو فطرت کہا گیا ہے. تو یہ لیکچر نمبر ہے جی 26، پیج نمبر ہے 224. اب یہاں پہ آپ کی اور ہماری توجہ ایک خاص نقطے کی طرف دلائی جا رہی ہے، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ کائنات میں ہر شے کا کوئی نہ کوئی نام ہوتا ہے، اور یہ نام ہی کسی شے کا مظاہرہ کرتا ہے یا اس کی پہچان ہوتی ہے. لیکن یہ بات ذہن نشین رکھنا ضروری ہے کہ نام سے شے کے جسم کا مظاہرہ ہوتا ہے. دراصل شے کا اصل وجود اس کا ہیولا ہے، یعنی کوئی چیز ہے نا، تو اس کا نام جو ہے وہ اس کے ظاہری وجود کی طرف اشارہ کرتا ہے، لیکن اس کا اصل وجود ایک ہیولا ہے. مثال آپ کرسی کہیں، اب کرسی کہنے سے ایک وہ کرسی جو آپ کے سامنے پڑی ہے یا جس پہ آپ خود تشریف فرمائیں، ٹھیک ہے، یہ جو ہے یہ اس چیز کے جسم کی طرف اشارہ ہے. لیکن اگر آپ اسے خیال میں سوچیں تو کرسی ایک ہیولا سا ہے. مثلا اب یہ دیکھیے مثال، حضور مرشد کریم کیا مثال فرما رہے ہیں. مثلا جب ہم پانی کہتے ہیں تو پانی کا نام ذہن میں آتے ہی ہمارے سامنے ایک شکل آتی ہے، ہمیں اس کے خد و خال نظر آتے ہیں، اور ہم ان خد و خال کو پانی کے نام سے پہچانتے ہیں. اس طرح ہم کسی انسان کا نام زید، بکر یا محمود رکھتے ہیں، تو جب زید کہتے ہیں تو دراصل ہم ان جسمانی خد و خال کا تذکرہ کرتے ہیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے. لیکن جب ہم تفکر کرتے ہیں اور اس بات کو گہرائی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نام ایک علامت ہے. اگر اس علامت یعنی جسم کا تعلق ظاہری دنیا سے ختم کر دیا جائے تو زندگی برقرار نہیں رہتی. بالفاظ دیگر، ہم کسی چیز کا نام لیتے ہیں تو مراد اس شے کا جسم ہوتا ہے، اس شے کی زندگی یا روح نہیں ہوتی. یہ ایک اصول، ایک قانون بتا دیا، کیونکہ یہ تخلیقی قوانین میں ایک امپورٹنٹ نقطہ ہے کہ جب ہم قلم کہتے ہیں تو ہماری مراد قلم کی علامت یا قلم کے نام یا قلم کے جسمانی خد و خال سے نہیں ہوتی. یعنی ہمارے ذہن میں کاف، لام، میم نہیں آتا، قلم کا وصف آتا ہے. قلم کا وصف کیا ہے؟ کہ وہ لکھتا ہے، وہ لکھنے والی چیز، یعنی کہ اب اس کی کوئی بھی شکل ہو، وہ سرکنڈے کا بنا ہوا ہو، وہ پارکر کا پین ہو، وہ بال پوائنٹ ہو، یہ سب قلم ہے. لیکن ये जब मैंने दूसरे नाम लिए, सरकंडे का बना हुआ या पार्कर का या बालपॉइंट का, तब जाके उसकी क्लासिफिकेशन हुई, वरना कलम का वस्फ लिखना है। तो हमारे जहन में कलम का वस्फ आया, उसके जिस्मानी खदोखाल नहीं आए। कलम उस हकीकत पर कायम है जो कलम के मफहूम से हमारे जहन को मुत्तला करती है। कलम असल में क्या चीज है? एक हकीकत पर कायम है, ये एक कुछ हकायक का मजमू है। कलम के मफहूम से हमारे जहन को मुत्तला करती है, यानी वो हकीकत जो हमारे जहन को इत्तला दे रही है कि कलम क्या चीज है। जब हम कलम कहते हैं तो हमारे जहन में कलम का वस्फ आता है, कलम का वस्फ यह है कि कलम लिखने का काम करता है, ख्यालात को शक्लो सूरत देने वाली चीज और मफहूम को तहरीरी शक्ल में कागज पर मुंतकिल करने वाली चीज का नाम कलम है। यह है कलम। कलम एक जिस्म है, लेकिन अब कलम का वस्फ अब जिस्म हो गया और उसका वस्फ उसकी जिंदगी हुआ। इसी तरह जब हम किसी चीज का नाम पुकारते हैं तो उसके जिस्मानी खदोखाल उसका जिस्म है, लेकिन उसके औसाफ जो है वो उसकी जिंदगी है। कलम एक जिस्म है, लेकिन कलम का वस्फ उसकी जिंदगी है। इसी तरह मौजूदात के अंदर जिस कदर नौए हैं और उन नौ में जिस कदर अफराद हैं, उनमें से हर फर्द का कोई ना कोई नाम है। अब इस बात का शाखसाना जो है वो जाके मिलता है इल्मुल अस्मा से। इल्मुल अस्मा नाम रखने का इल्म, तो नाम रखने के पीछे एक साइंस है। फिर नाम को सुनकर उसके जिस्म और उसकी रूह या उसकी जिंदगी से तारुफ होना, ये भी इल्मुल अस्मा के इल्म का खासा है। ये बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद दूसरी बात, हम कायनात को समझने के लिए कायनात के हर फर्द का नाम मुतहर्रक जरा रख देते हैं, यानी हम कायनात के हर फर्द को एक मुतहर्रक जरा मान लें। अब जर्रे से क्या मुराद है कि वो अनडिविजिबल है। जब हम आदमी कहेंगे तो आदमी में बहुत सारी चीजें मिली हुई हैं, उसके हाथ हैं, पांव हैं, पेट है, सर है, नाक है, आंखें हैं, कान है, ये बहुत सारे अज्जा मिलकर एक जुज़्वे लात अज्जा बन गए। तो काय इसलिए उसका नाम मुतहर्रक जर्रा रखा। तो अब उस जर्रे के या उस लाम तज्जा जुज के दो रुख हैं। क्या? हरकत। हरकत का एक रुख रंगीन और रोशन है, अब इसको जिस्म कहते हैं कि वो उसमें रंग भरे हुए, और रंग पीछे आप पढ़ चुके हैं कि नस्वा की हरकत को कहते हैं। तो एक उसमें रंग भरे हुए हैं जिसको जिस्म कहते हैं, और हरकत का दूसरा रुख बेरंग रोशनी है जिसको नस्मा कहते हैं, जिसको फितरत कहते हैं। बेरंग रोशनी का नाम नस्मा है। इसी नस्मे को ये देखें, अब वही तीन चीजें हैं, एक जिस्म है, एक जहन है और एक रूह है। अब जिस्म की मिसाल दे दी कि ये मादी खदोखाल हैं, तो नस्मा वो गैर मरई यानी कि नजर ना आने वाली रोशनी है, बेरंग रोशनी है जो जिससे वो जिस्म बन रहा है, जो नजर नहीं आ रहा उसे हलांक नस्मा कहा गया। नस्मा ज्यादा वसी है जहन से, जहन को आप और मैं थोड़ा बहुत फिर भी मुतारिफ है उससे, तो इसलिए मैं ये नाम ले रहा हूं। तो नस्मे का अब इसी को फितरत कहा गया, और ये तब्दील नहीं होती, फितरत नहीं तब्दील होती, जिस्मानी खदोखाल तब्दील होते हैं। अब इस नस्मे का एक रुख जमान है और नस्मे का दूसरा रुख मकान है, यानी हमारा जहन एक वक्त में जमानियत से भी मुतारिफ है और ऊपर की सतह पे जमानियत से मुतारिफ है और निचली सतह पे मकानियत से मुतारिफ है। अब ये जमान जो है ये रूह है और जमान असल में क्या है, ये अल्लाह की मशीयत है, यानी अल्लाह यूं चाहता है, अल्लाह ने जैसा चाहा ये अल्लाह की मशीयत कहला रही है। अब जमान का एक रुख तजल्ली है और दूसरा रुख अल्लाह की सिफात है। ये जिस चीज को आप जमानियत कह रहे हैं फिर आगे उसके दो रुख हैं, उसके दो रुख क्या हैं, तजल्ली और फिर तजल्ली के ऊपर का रुख जो है वो अल्लाह की सिफात। अब देखिए इसको आप अगर लिस्ट आउट करें तो इसकी लिस्ट ये बनेगी कि कायनात मुतहरक जर्रात हैं जो रंगीन और रोशन है और उसका दूसरा रुख जो है वो बेरंग है, बस ये है कायनात। उधर देखें दूसरी तरह से लिस्ट बनाई कि ये रंगीन और रोशन जिस्म जो है ये जिस्म है, रंगीन रोशन रुख जो है ये जिस्म है और बेरंग रोशनी जो है ये नस्म है। अब नस्मा का एक रुख जमान है और नस्मा का दूसरा रुख मकान है, यानी ये सारी जो तहरीर है इसका खलासा एक दो तीन चार, एक दो तीन चार करके दोबारा लिख दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जमाने को बुरा ना कहो, जमाना अल्लाह है। अब हरकत का वो रुख जिसको हमने जमान कहा है उसमें तगैयर नहीं होता, और हरकत का वो दूसरा रुख जिसमें तगैयर होता रहता है वो मकान है। अब हरकत का वो रुख जिसमें खदो खाल नहीं होते या होते हैं तो वो बदलते नहीं है, उसको जमानियत कहा गया है। लेकिन हरकत का वो रुख जिसमें चेंज नजर आती है, अब इस चेंज को, हरकत को और चेंज को समझें। हरकत जब भी होगी तो वो सराउंडिंग्स के रेफरेंस से होगी, इसलिए जब इसको हम एज ए रेफरेंशियल क्वांटिटी देखते हैं तो उसमें हर कदम पे हर नुक्ते पे तब्दीली हो रही है। ठीक, अब देखिए कि नस्मा जमानियत है और यही जमानियत जो है रूह है और रूह जो है ये मशीयत इलाही। अब देखिए क्या रहा, रूह जो है इसे मशीयत इलाही कहा, कुरान में इसे अमरे रब्बी कहा, तो उस अमरे रब्बी की वजाहत फरमा रहे हैं कि किस तरह से रूह जो है वो जमानियत है और जमानियत किस तरह से नस्मे को वजूद दे रही है। अब जमान का एक रुख तजल्ली और एक रुख सिफात, यानी कायनात को किसी भी जाविये से देखा जाए तो वो दो तरह से नजर आती है। नंबर एक कि कायनात खदो खाल के साथ बराहे रास्त मुतहर्रक है लेकिन हरकत नजर नहीं आती। अब मुजाहिराती जिस्म की हरकत ये किसी शय की पाबंद है, जिस्म की अपनी कोई इख्तियारी हरकत नहीं है, यानी जब तक कोई अंदर से इसको हिलाएगा नहीं तो ये नहीं हिलेगा। हरकत का एक रुख हमारी नजरों से ओझल है, दूसरा रुख हमारी नजरों के सामने, यानी जब भी आप हाथ हिलाते हैं तो हाथ का हिलना ये उसकी जाहरी रुख है, लेकिन जो चीज हाथ को हिला रही है वो नजर से पोशीद है। जो रुख नजर से ओझल है वो क्या है, उसे रंग कहें, उसे रोशनी कहें, उसे नूर कहें, उसे फितरत कहें, उसे हकीकत कहें या उसे नस्मा कहें। ये देखे कितने नाम दे दिए उस रुख के जो हाथ की हरकत का सबब बन रहा है। अब हरकत के एक रुख में तगैयर है, तगैयर से क्या मुराद है, तब्दीली हो रही है, यानी आप हाथ हिला रहे हैं तो हाथ कुर्सी के या मेज के पास है, वहां से दूर हो रहा है, हवा में ऊपर तक आया फिर नीचे गया, तो ये हर नुक्ते पे उसने फासले में तब्दीली पैदा हुई, तो ये हरकत में तब्दीली हो रही है, ये चेंज है। اور جس رخ میں تبدیلی ہو رہی ہے وہ مکانیت ہے، اور جہاں تغیر نہیں ہے وہ زمانیت ہے. اب یہ متغیر اور غیر متغیر حرکات، یہ دو قدریں ہیں، دو قدریں ہیں، یعنی یہ دو مقداریں. ایک میں ہمہ وقت تغیر و تبدل ہو رہا ہے، دوسرے میں تغیر و تبدل نہیں ہے. جس رخ میں تبدیلی واقعہ نہیں ہو رہی، سوری، جس رخ میں تبدیلی واقعہ ہو رہی ہے وہ مخلوق ہے، وہ مخلوق ہے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ جس رخ میں تبدیلی نہیں ہو رہی وہ خالق ہوا. اب خالق کے بارے میں آپ نے اور ہم نے ایک بنا لیا ذہن کے صرف اللہ خالق ہے. اللہ کہتا ہے کہ احسن الخالقین، کہ اللہ وہ احسن الخالقین، اللہ تو سارے خالقوں میں سے احسن ہے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ کہ خالق تو بہت ہیں، لیکن اللہ نے خود کو احسن الخالقین کہا. اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ کہ اس کا مطلب واضح ہے کہ ہم اس بات کو تسلیم تو کریں کہ یہ تخلیق کی صلاحیتیں ذہن کو حاصل ہیں. یہ تخلیق کا قانون بتایا جا رہا ہے کہ تخلیقی قوانین کیا ہیں، کہ جس رخ میں تغیر و تبدل نہیں ہے وہ نسم ہے، اور جس رخ میں تبدیلی واقع ہو رہی ہے وہ جسم ہے، اور وہی مخلوق ہے. اب ذرا سمجھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں. تو جب ہم مخلوق کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہمیں مخلوق میں یکتائی نظر نہیں آتی، یعنی مخلوق یکتا نہیں ہے، اس جیسے کئی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کو کسی چیز کی احتیاج نہیں، یعنی قل ہو اللہ ہو احد، یعنی اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، احد ہے. مخلوق میں نہ یکتائی ہے نہ مرکزیت ہے. تو اللہ تعالیٰ دوسری بات فرماتے ہیں اللہ الصمد، یعنی اللہ کو کسی چیز کی احتیاج نہیں ہے، وہ ہر ضرورت سے مبرہ ہے. مبرہ ہے یعنی بری ہے، وہ فارغ ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ضرورت ہمیشہ تقاضوں کے تحت ہوتی ہے. تو اللہ تو خود تقاضوں کا خالق ہے، تو وہ احتیاجات سے ماورا ہے. جبکہ مخلوق کا ذی احتیاج ہونا لازمی امر ہے. مخلوق، میں نے عرض کیا تھا پہلے، ہم نے پڑھا ہے بلکہ، کہ مخلوق میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک مقصد ہوتا ہے اور ایک اس کے تقاضے ہوتے ہیں. تو ذی احتیاج ہونا مخلوق کے لیے لازم ہو گیا، یعنی جسم کو چلانے کے لیے جو انرجی درکار ہے، اس انرجی کو مسلسل فراہم کرنے کے لیے جو چیزیں ہیں ان کو نام تقاضے ہیں. تو جسم کی ضرورتیں ہیں، تو مخلوق کا ذی احتیاج ہونا لازم ہے. اس لیے مخلوق زندگی کے ہر ہر قدم پر وسائل کی محتاج ہے. نمبر تین، اللہ کسی کی اولاد نہیں، لم یلد، جبکہ مخلوق کی اولاد ہوتی ہے. چوتھی صفت کہ اللہ کسی کا باپ نہیں ہے، ولم یولد، وہ کسی سے جنا نہیں گیا، جبکہ مخلوق باپ ہوتی ہے، وہ آگے بھی جنتی ہے. پانچویں بات ہے، اللہ کا کوئی خاندان نہیں، ولم یکن لہو کفواً احد. یہ کن کا نون لکھنے میں تو آتا ہے، پڑھنے میں نہیں آتا. کل ہم پڑھتے ہیں ولم یکن لہو کفواً احد، یعنی نون حذف ہو جاتا ہے، لیکن وہاں کن، کوئی ہو نہیں سکتا، کافی، کفا، یعنی اللہ کے لیے کافی نہیں ہے، یعنی اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. خاندان کی ضرورت ہوتی ہے نا، خاندان ایک ضرورت ہے، سوشل ٹائز ہیں. اگر خاندان نہ ہو تو بچے کو لک آفٹر نہیں کیا جا سکتا. اب ثانی ہونا، ذی احتیاج ہونا، صاحب اولاد ہونا، بیٹی یا بیٹا ہونا، خاندان ہونا، یہ مخلوق کی قدریں ہیں، اور یہ پانچوں قدریں ہمہ وقت تغیر پذیر ہیں. اب دیکھیں بات کو کہاں دکھا کر، جسم کی حرکت से बात को फैलाकर कहां ले गए, कि ये जो पांचों कदरे हैं ये सारी तगैयर पजीर हैं। अब ये देखे कितना जहन वसी हो गया कि आपने तगैयर को इतने वसी पर्सपेक्टिव में देखा। अब आज का बच्चा अगर औलाद है तो कल वो बाप बन जाएगा, तो उम्र के हिसाब से जरूरियात घटती बढ़ती रहती हैं, खानदानी तर्जें भी बदलती रहती हैं। ये पांचों कदरें जो अल्लाह ने मखलूक के लिए बयान फरमाई हैं, ये सब मकानियत हैं और ये सब हमें नजर आती हैं, लेकिन खालकियत की कदरें इसके बरक्स हैं। जब हम मखलूक का तस्करा करते हैं तो मखलूक की कदरों में इब्तदा, इंतहा, इश्तबा, बेयकीनी, वसवसे। इश्तबा यानी शुबा होना, हो सकता है हो सकता है ना हो, ये इश्तबा यानी बेयकीनी। फिर वसवसे और हर किस्म का तगैयर हमें नजर आता है। रोशनी की दर्जा बंदी और रोशनी के तगैयर से मखलूक की मुख्तलिफ नौएं बनती हैं और मुख्तलिफ नौ में मुख्तलिफ शक्लो सूरत, मुख्तलिफ आसार व अहवाल पाए जाते हैं। अब ये आसार और अहवाल एक टेक्निकल टर्म है, शक्लो सूरत यानी शक्ल और फिर उसकी सूरत। शक्ल गोया पूरे वजूद का खाका और सूरत उसके फीचर। इसी तरह जो हम काम करते हैं उसके असरात मुरतब होते हैं, उसे आसार कहा। अहवाल जिन हालात में वो काम हो रहा होता है। तो ये आसार और अहवाल शक्लो सूरत में कितना ही गुम हो, सॉरी मैं अगर मुख्तलिफ नौ में मुख्तलिफ शक्लो सूरत मुख्तलिफ आसार अहवाल पाए जाते हैं। अब किताब लौह कलम में जमानो मकान की एक बहुत वाज़े मिसाल ये रास्ते और मुसाफर से दी गई है, यानी हजूर कलंदर बाब औलिया ने इस जमान और मकान को वाज़े करने के लिए एक मिसाल दी है कि एक रास्ता है और एक मुसाफिर है। अब रास्ते को जमान कहा गया और मुसाफर मकान है। अब मुसाफिर अपने अंदर कितना ही नहमाक रखता हो, वो अपने आसार और अहवाल में कितना ही गुम हो, रास्ते के बगैर सफर नहीं होता, रास्ते के बगैर सफर नहीं कर सकता। वो कितना ही बेनियाज और बेखबर हो जाए, अपनी जात से कितना ही गाफिल हो जाए, कोई मुसाफिर रास्ते से लातालक नहीं होता। भाई मुसाफिर तो उस वक्त मुसाफिर है ना जब वो रास्ते पे चल रहा है, जब तक वो रास्ते पे चल रहा है वो मुसाफिर कहला रहा है। अगर वो रास्ते पे नहीं चल रहा, पड़ाव पे पहुंच गया, तो उसे हम मुसाफिर थोड़े ही कहेंगे, वो सफर में थोड़े ही रहा, या तो वो मंजिल रसीदा कहलाएगा या वो अभी घर से ही नहीं निकला, घर में पड़ा हुआ है। तो मुसाफिर उस वक्त मुसाफिर है जब रास्ते पर चल रहा हो। ये मुसाफिर की हरकात व सकनात, उसका किरदार, उसकी जिंदगी की तर्जें और फिक्रें किसी भी तरह रास्ते की हदूद से बाहर नहीं हो सकती। अब रास्ते की मिसाल से देखें ये बात को कितना फैला दिया गया कि वो कितना भी अपने अंदर इनहमाक रखता हो, वो रास्ते के साथ जुड़ा रहने का पाबंद है। क्यों? रास्ते में तगैयर नहीं है, लेकिन मुसाफिर में हर कदम के बाद दूसरे कदम में तगैयर हो जाता है। देखे ना, एक कदम लेते हैं, दूसरा कदम आप जब लेते हैं पहले कदम के बाद, तो आप पहले कदम के आसार और अहवाल से बढ़कर आगे चले गए। अब नए हालात और वाकयात, नई जहतें, नई सिमतें सामने आ गई, तो तब्दीली हो गई। अब ये रास्ता इसी को लाशऊर कहा है और ये मुसाफिर जो है ये शऊर है, यानी शऊर एक मुसाफिर है और ये लाशऊर एक रास्ता है। तो हम शऊर से लाशऊर को पहचान सकते हैं। शऊर में ज्यादा से ज्यादा इन्हामाक हो। क्या होता है कि लाशऊर में तवज्जो कम हो जाती है। जिंदगी की तमाम तर्जें रास्ते के ऊपर कायम है, इसलिए जितना ज्यादा वक्त रास्ते यानी लाशऊर में गौर व फिक्र किया जाएगा, उसी मुनासबत से जिंदगी ज्यादा अमल के रास्ते तय करेगी। अब यहां पे इस नुक्ते को समझ लें, ये हम जब मुराकबा करते हैं तो असल में हमें कहा यह जाता है कि आपने शऊर को सस्पेंड करना है, शऊर से माहौल से तवज्जो हटानी है और अपने इनर में यानी बातिन क्या है जमानियत, जमानियत क्या है रास्ता। जब आप रास्ते पे फोकस करेंगे तो मुसाफर को ज्यादा क्लियर होगा कि उसको किधर जाना है, कितना सफर करना है, किस सिम्त में सफर करना है, वरना तो वो मुसाफर को अगर रास्ते का शऊर नहीं है तो वो तो ठोकरें ही खाता रहेगा ना जी। अब इससे अगला जो है ये शऊरी कदरें और फिक्री दुनिया। अब शऊर की कदरें उसकी मकदारें क्या हैं और ये हमारी फिक्री दुनिया क्या है। अब ये आलम में रंगो बू में ये रंगो बू की दुनिया में हम शऊर से लाशऊर को पहचानने की कोशिश करते हैं। गौर करें कि हमारी शऊरी हरकत से अंदाजा होता है कि हमें लाशऊर किस तरफ आंक रहा है या किधर ले जा रहा है यानी रास्ता क्या है, यानी हम शऊर की हरकत से रास्ते का अंदाजा करते हैं। ये है आलम रंगो बू में यानी आलम नासूत में। जबकि जिंदगी के तमाम आमाल वो हरकत का ताल्लुक तो लाशऊर से। इंसान की तवज्जो जिस कदर ज्यादा लाशऊरी शऊरी जिंदगी में होती है, इंसान की तवज्जो जिस कदर ज्यादा शऊरी जिंदगी पर होती है उसी मुनासबत से लाशऊर में तवज्जो कम हो जाती है। चूंकि जिंदगी का दारो मदार लाशऊर पर है इसलिए शऊर में ज्यादा तवज्जो मरकूज होने से जिंदगी के आमाल और उनकी कदरें कम हो जाती हैं। शऊर का ज्यादा से ज्यादा इन्हमाक ज्यादा से ज्यादा शऊरी हरकत में रहने की दलील है। और जब इंसान शऊरी कदरों से हटकर लाशऊर, अब देखें यहां पे क्या कहा, फिक्री दुनिया यानी हमारा जो फिक्र की दुनिया है जिसमें हम जहन से सफर करते हैं उसमें दाखिल हो जाता है तो शऊर की गिरफ्त कम हो जाती है। याद रखें ये लाशऊर है जो मकानियतों की तामीर करता है, इसलिए अगर हमारा राब्ता लाशऊर से हो जाएगा तो हम भी मकानियतों को ज्यादा बेहतर समझ सकेंगे। ये जो आलम मकान है या आलम खल्क है इसमें मकानियत गालिब है और जमानियत मगलूब है। मफहूम ये है कि जब हम शऊरी जिंदगी में सफर करते हैं तो हमारे ऊपर शऊर का गलबा होता है और लाशऊर मगलूब रहता है। लेकिन जब हम मकानियत से गुजर कर जमानियत में कदम बढ़ाते हैं तो लाशऊर गालिब हो जाता है और शऊर मगलूब हो जाता है। ये है जी लुबे लुबाब सारे अफसाने का, सारे इस किस्से का, ये पूरी दास्तान का। क्या कि किसी तरह हमारी तवज्जो जमानियत में मरकूज हो जाए, जमानियत में हम तवज्जो मरकूज करके फिक्री दुनिया में कदम बढ़ाएंगे तो लाशऊर गालिब हो जाएगा और शऊर मगलूब हो जाएगा। जब शऊर बिल्कुल डेड हो जाता है, मغلوب होना और चीज है, डेड होना और चीज है, उसका सस्पेंड होना और चीज है, मغلوب हो जाएगा। इस फर्क को समझें, ये ना नींद की कैफियत है ना मौत की कैफियत है। इसे शऊरी हवास में रहते हुए आपने लाशऊरी हवास को इस्तेमाल करना है, शऊर में रहते हुए लाशऊरी हवास का इस्तेमाल करना सीखना जो है, ये है जी कुल खलासा और लुबे लुबाब इस पूरे मजमून का। मेरा ख्याल है यहां रुक जाते हैं, कल इंशाल्लाह इससे आगे चलेंगे। ठीक हो गया जी।